आज छठे अध्याय में आप आशुतोष कृष्ण शास्त्री से वानप्रस्थ सन्यास धर्म के विषय में चर्चा सुनेंगे। अथ खष्टोध्याय। पहले श्लोक में वानप्रस्थ आश्रम धारण करने का विधान किया गया है। एवं ग्रहाश्रमे स्थित्वा विधिवत् स्नातको द्विजः वने वसेत् नियतो यथावद् द्विजितेन्द्रियः। एवं पूर्वोक्त प्रकार विधिवत् स्नातकः द्विजः विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या पढ़ के समावर्तन के पश्चात स्नान विधि के द्वारा करने वाला द्विज क्षत्रिय और वैश्य विजितेन्द्रियः नियतः यथावत् ग्रहाश्रमी स्थित्वा जितेन्द्रिय जितात्मा होकर यथावत् ग्रहाश्रम करके वने वसेत् वन में वसे और इसमें वानप्रस्थ धारण करने में ब्राह्मणों के प्रमाण बताते हुए विद्वान यहां पर कहते हैं ब्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेत् गृही भूत्वा वनी भवेत् वनी भूत्वा प्रव्रजेत्। ब्रह्मचार्याश्रम पूर्ण करके गृहस्थ बने, गृहस्थाश्रम को पूर्ण करके वानप्रस्थ धारण करे, अनुवानप्रस्थ आश्रम को पूर्ण करके सन्यासी बने। जैसे कि सनातन धर्म की मान्यता है कि 25 वर्ष पर्यंत तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, तदुपरांत 25 से 50 तक गृहस्थ आश्रम और 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 वर्ष सन्यास आश्रम धारण करना चाहिए। ऐसा सनातन धर्म की मान्यता है। वानप्रस्थ धारण करने का समय बताते हुए दूसरे श्लोक में महर्षि मनु कहते हैं गृहस्थस्तु तदा पक्षेत् वलीपलिप्तमात्मनः अपत्यस्यैव चात्पत्यं तदारण्यं समाश्रयेत। गृहस्थः तु गृहस्थ लोग यदा आत्मनः वली पलितं पश्येत, जब अपनी देह का चमड़ा ढीला और श्वेत केश होते हुए देखें, अर्थात 50 वर्ष की अवस्था। एक बात यहाँ पर देखने योग्य है कि हमारे यहाँ जो देवनागरी की गिनतियाँ हैं वो भी हमें ऐसा बताती हैं कि जैसे 50 पूरा हो तो हमें संकेत करती हैं 51 वन की ओर प्रस्थान कर, 52। इस तरह से हमारी गिनतियां हमको संकेत करने लगती हैं कि अब तुझको वन जाने का समय हो गया है, अर्थात 50 वर्ष के बाद जीवन के द्वितीय चरण में हमको वन के लिए प्रस्थान कर लेना चाहिए, द्वितीय चरण के उपरांत। तो वही यहां पर बताते हुए भगवान मनु कहते हैं कि जब श्वेत केश हो जाए और चमड़ी ढीली हो जाए तो गृहस्थ को वन के लिए प्रस्थान कर लेना चाहिए। तृतीय श्लोक में वानप्रस्थ धारण की विधि बतलाई गई है। संतज्य ग्राम्यमाहारम सर्वं चैव परीक्षदं पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य वनं गच्छे सहैव वा। जब वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा लेवे तब ग्राम्यम आहारम गांव में उत्पन्न हुए पदार्थों का आहार और सर्वं एव परीक्षदं घर के सब पदार्थों को संतज्य पुत्रेषु भार्यां निक्षिप्य, सभी पदार्थों को छोड़कर अपने पुत्रों और पत्नी के लिए छोड़ देना चाहिए, अथवा संग लेके वनम गच्छेत, वन को जाना चाहिए। तीसरे श्लोक के उपरांत चौथे श्लोक में भगवान अग्निहोत्र इत्यादि का विधान करते हुए कहते हैं, अग्निहोत्रम समादाय ग्रैहचाग्निपरिदम ग्रामादरण्यम निसृत्य निवसेन्यतेन्द्रियः। जब गृहस्थ वानप्रस्थ होने की इच्छा करे तब अग्निहोत्रम च ग्रैहम अग्निम परिच्छदम समादाय, अग्निहोत्र को सामग्री सहित लेके ग्रामात निसृत्य गांव से निकलकर अरण्यम जितेंद्रिय निवसित, अरण्य में वह जितेंद्रिय निवास करे और वानप्रस्थ के लिए पंचयज्ञों का विधान करते हुए अगले श्लोकों में कहते हैं, मनुन्यैर विविधैर धर्मै शाकमूल फले नवा एता नेव महायज्ञान विवंपेदद्विधि पूर्वकम्। विविधैः मुन्यैः, मुन्य नहीं है, नाना प्रकार की सीमा अर्थात सामा इत्यादि निवार इत्यादि अन्य, मेध्यैः शाक मूल फलेन, सुंदर सुंदर शाक मूल फल फूल कंदादि से एतान एव महायज्ञान विधिपूर्वकम् निर्वपेत, इन महायज्ञों को करना चाहिए। वे महायज्ञ अगले श्लोकों में भगवान बताएंगे। छठे श्लोक जो प्रक्षिप्त माना जाता है उसमें बताया गया है, वसीत चरम चीरम वासायम स्नायात प्रगे तथा जटाश्च बिभ्रियान नित्यम श्मस्रो लोक लोम नखानि च। चरम वा चीरम वसीत, चरम वर्ग अथवा वस्त्र निर्मित कपड़े पहनना चाहिए। प्रगे तथा सायम स्नात, प्रातःकाल और सायंकाल को स्नान करना चाहिए। च नित्यम जात अश्रु लोम नखानि बिभ्रयानि, सदा सिर के बाल दाढ़ी मूछ लोम नख को रखना चाहिए। वानप्रस्थ के समय में जैसा मैंने पहले बताया कि कुछ विद्वान इसको प्रक्षिप्त मानते हैं क्योंकि इसमें प्रसंग विरोध है और यहां पर पंच महायज्ञों का विधान बताने जा रहे थे पंचम श्लोक में और अचानक छठे श्लोक में इसका विधान दाढ़ी मूछ इत्यादि रखने का विधान करके इसमें प्रसंग विरोध आ गया है, अतः कुछ विद्वान इसको प्रक्षिप्त मानते हैं। साथ में श्लोक में अतिथि यज्ञ एवं पितृ यज्ञ का विधान किया गया है। यद भक्षम स्यात् ततो दद्यात् बलिम भिक्षाम च शक्तितः अमूल फल भिक्षाभिर रचे अर्चयेत आश्रमागतान्। यद भक्षम स्यात्, जो भी खाने का पदार्थ हो तथा उससे ही बलिम दद्यात् बलि देना चाहिए, बलि वैश्वदेव यज्ञ करना चाहिए। च शक्तितः भिक्षाम, और यथाशक्ति भिक्षा देनी चाहिए। आश्रम आगतान, आश्रम में आए हुए अतिथियों को आप मूल फल भिक्षा भी, जल कंदमूल फल भिक्षा इत्यादि से संतुष्ट करना चाहिए। अर्चयित माने सत्कार करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। आठवें श्लोक में ब्रह्मयज्ञ का विधान करते हैं, स्वाध्याये नित्युक्तः स्यात् दान्तो मन्मैत्रः समाहितः दाता नित्यम अनादाता सर्वभूतानुकंपकः। स्वाध्याये अर्थात स्वाध्याय से नित्य युक्त जो नियुक्त है, समाहितः अर्थात जितात्मा, मैत्रः सबका मित्र, दान्तः इंद्रियों को दमनशील दमन करने वाला, दाता विद्या आदि का दान देने वाला, सर्वभूत अनुकंपकः सब प्रकार से दयालु, अनादाता किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे, नित्यम स्यात् इस प्रकार सदा वर्तमान रहे। अर्थात इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है कि जहां जंगल में वेदादि शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में नियुक्त युक्त मन और इंद्रियों को जीतकर यदि स्वस्त्री भी समीप हो तथापि उसे भी सेवा के सिवाय विषय सेवन अर्थात प्रसंग उसके साथ सहवास कभी नहीं करना चाहिए। और सबसे मित्र भाव, समभाव, समाभाव, नित्य देने वाला और किसी से कुछ नहीं लेना लेने वाला, सब प्राणी मात्र पर अनुकंपा रखने वाला होना चाहिए। नवे श्लोक में अग्निहोत्र का विधान बताते हैं। वैतानिकं च जुह्यादग्निं होत्रं यथा विधि दर्शमस्कन्दयन् पर्वं पौर्णमासं च योगतः। वानप्रस्थ यथा विधि पूर्व विधि के अनुसार अग्निहोत्रम दैनिक यज्ञ पंच महायज्ञों को वैतानिकम विशेष अवसरों के लिए किए जाने वाले, दरसम च पौर्णमासम पर्व अस्कंदयन अमावस्या और पूर्णिमा आदि पर्वों पर किए जाने वाले पर्व यज्ञों को भी न छोड़ते हुए योगतः जुहुयात निष्ठापूर्वक यज्ञ करे। वैतानिक शब्द से अभिप्राय यह है कि किसी विशेष अवसर पर होने वाले यज्ञ। दसवें अध्याय में विशेष यज्ञों का आयोजन करने के बारे में कहते हैं। ऋक्षेष्ट्याग्रहणम चैव चातुमार्स्यानिचाहरेत तुरायणम च क्रमशो दक्षस्यायनमेव च। ऋक्षेष्टि अर्थात नक्षत्र यज्ञ, आग्रयणम नहीं अन्य का यज्ञ, च चतुर्मास्यानि और चतुर्मास का यज्ञ, च क्रमशः तुराणयम दक्षास्यायनम एवं आहरेत उत्तरायण और दक्षिणायन यज्ञ, इन अवसरों पर विशेष यज्ञों का आयोजन करना चाहिए। नक्षत्रों की गणना करते हुए विद्वान यहां पर नक्षत्रों के यज्ञ से अभिप्राय है कि जो 27 नक्षत्र हैं, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसी, पुख्य, अश्लेखा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाखाड़, उत्तराखाड़, श्रवण, घनिष्ठा, सतभिज, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और 27वां रेवती, इस प्रकार से इन सब नक्षत्रों का यज्ञ करना चाहिए। और चतुर्मास से इत्यादि महीने के 4 महीने के पश्चात अनुष्ठेय यज्ञ कार्तिक, फाल्गुन, आषाढ़ के प्रारंभ में यज्ञ करना चाहिए। सूर्य की भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर स्थित जो मकर से कर्क संक्रांति तक का काल है उसे उत्तरायण कहते हैं, उसमें यज्ञ करना चाहिए। अर्थात जिस दिन मकर संक्रांति होती है उस दिन से उत्तरायण का प्रारंभ होता है। तो सूर्य की भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर की स्थिति के समय दक्षिणायन कहलाता है, इसमें ग्रीष्मकाल आ जाता है। 11वें अध्याय में 11वें श्लोक में बलि वैष्णदेव का विधान है। वाशंत सारदैर्मेध्यैर्मन्यो नै स्वयमाहृतै पुरुडाशांश चरुश्चैव विद्यवन् निर्वपेत्। पृथक। वाशंत शारदैः मेध्यैः स्वयं आहतैः अन्नैः आहृतैः अन्नैः। वसंत और शरद ऋतु में प्राप्त होने वाले पवित्र एवं स्वयं में लगाए हुए निवार इत्यादि अन्न पुरुडास चरुण विधिवत पृथक निर्वपेत। पुरुडास और चरु नामक यज्ञीय हव्यों को विधि अनुसार अलग अलग तैयार करना चाहिए। देवताभ्यस्तु तदहुत्वा वन्यम मेध्यतरम हविः शेषमात्मनि जुंजीत लवणम च स्वयं कृतम्। तदमेध्यतरम वन्यम हविः देवताभ्यम हुत्वा, उस पवित्र वन के अन्नों से निर्मित हवि को देवताओं के लिए होम कर आहुति देकर शेषम शेष भोजन को स्वयं कृतम लवणम अपने लिए बनाए गए लवण युक्त पदार्थों को आत्मनम युंजीत अपने खाने के लिए प्रयोग में लाए। 13वें अध्याय में कहते हैं कि पवित्र भोजन करना चाहिए। स्थलजोद कशाकानि पुष्पमूल फलानि च मेद्य वृक्षोद भवान्यद्यात् स्नेहाश्च फलसंभवात्। अर्थात स्थलज औदक शकानि भूमि और जल में उत्पन्न शाकों से तथा मेध्य वृक्षोद भवानि पुष्प मूल फलानि पवित्र वृक्षों से उत्पन्न होने वाले फूल कंदमूल और फलों को च फल संभवान स्नेहान और फलों से प्राप्त होने वाले रसों अर्कों को अध्यात्मने खाना चाहिए। अभक्ष्य पदार्थों का विधान करते हैं। वर्जयेन मधुमाशं च भौमानि कदकानि च भूस्त्रणं शीघ्रगृकं चैव श्लेमातकफलानि च। मधु यानी कि मदकारी मदिरा भांग इत्यादि पदार्थ, मांसम सभी प्रकार के मांस, बहुमानी कवकानी और भूमि में उत्पन्न होने वाले कुकुरमुत्ता इत्यादि कवक छत्राक जिसको कहते हैं, भूस्त्रणम और सर्वाण साग विशेष, शीघ्रुकम सफेद सहिंजन और श्लेष्मातक फलानि लिसौड़े के फल वर्जयेत, इन्हें नहीं खाना चाहिए। पंद्रहवें श्लोक में महर्षि मनु कहते हैं। तजेदाश्वयुजेमासि मुन्नयम् पूर्वसंचितम् जीरवाणि चैव वांसांसि साकमूल फलानि च। पूर्व संचितम मुन्नयम पहले इकट्ठा की हुई निवार इत्यादि अन्नों को और जीरवाणि वंशांश पुराने वस्त्रों को और शाक मूल फलानि पूर्व संचित शाक कंदमूल फल को आश्वयुजे मासे त्यजेत, आश्विन के माज में छोड़ देना चाहिए अर्थात नहीं ग्रहण करना चाहिए। वानप्रस्थ ग्रामोत्पन्न पदार्थ नहीं खाना चाहिए। इसका विधान करते हुए कहते हैं। नफाल कृष्णमस्नीयात् उत्सृष्टमपि केनचित् न ग्राम जातान्यार्तोपि मूलानि च फलानि च। फाल कृष्णम अर्थात फल से ज्योति हुई भूमि से उत्पन्न पदार्थों को केनचित् उत्सृष्टमपि किसी के द्वारा दिए जाने पर भी, ग्राम जतानि मूलानि फलानि ग्राम में उत्पन्न मूल फल इत्यादि को अपि न अश्नीयात् भूख से पीड़ित होते हुए भी नहीं खाना चाहिए। आरतः अपि न अश्नीयात् इसमें विचार करने योग्य बात है कि इसका कारण क्या है। वनस्थ के लिए ग्रामोत्पन्न वस्तुओं का निषेध इसलिए है क्योंकि गृहस्थ सदस्य सुख शक्ति में प्रवृत्त न हो। यदि वह ग्राम में उत्पन्न वस्तुएं खाने लगेगा तो ग्राम के निकट ही वो कुटिया बना लेगा जिससे उसके वानप्रस्थ में रहने और ना रहने से कोई भी लाभ नहीं होने वाला जो वानप्रस्थ का मेन मुख्य लक्ष्य है उससे वह च्युत हो जाएगा, अर्थात वह ग्राम के सुख में पड़ जाएगा। सत्रहवें श्लोक में अग्निपक्वा शनो वा स्यात् कालपक्व भुगे नवा अश्मकुट्टो भवेद्वापि दंतोलुकलोकिलोलिकोपि वा। वानप्रस्थ अग्नि परपक्व अशना अग्नि में पकाकर खाने वाला हो अथवा कालपक भुक समय पर स्वयं पके फल आदि को खाने वाला स्यात् हो अथवा वा अश्मकुट्टा पत्थर से कूट कर खाने वाला हो अथवा दंत उलूखली अपि भवि दांतों से चबाकर ओखल में कूट कर खाने वाला हो। सद्या प्रक्षालको वास्यान्मा संचिकोपि वा संस्मा शनिचयो वास्यात् समानिचय एव वा। वानप्रस्थ सद्या प्रक्षालक एक दिन के लिए अथवा मास संचयिकः स्यात् एक मास तक संचय करने वाला अथवा खड़मास निश्चया छह महीने तक संचय करके रखने वाला हो अथवा समानिचय एक वर्ष तक संचय करने वाला स्यात् होवे। नक्तम चान्नम समस्नीयात् दिवा वाहृत्य शक्तितः चतुर्थकालिको वापि वा स्यात् स्याद्वा प्यष्टमकालिकः। शक्तितः अन्नम आहृत्य यथाशक्ति अन्न को लाकर नक्तम वा दिवा शमस्नीयात् रात और दिन में खाए चतुर्थ कालिक वा चौथे पहर में खाए अथवा अष्टम कालिक स्यात् आठ पहर में एक ही बार खाए। चंद्रायणम विधानैर्वा शुक्ल कृष्णे च वर्तयेत् पक्षान्तयोर्वा प्यस्नीयात् यवांगो कथिताम स्वयं पुष्पमूल फलैर्वापि केवलैर्वर्तये सदा कालपक्वै स्वयं शीर्णै वैखान समते स्थितः। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चंद्रायण व्रत के अनुसार खाए अथवा दोनों पक्षों में अंत में पकी हुई लपसी एक ही बार खाए अथवा वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने आप निश्चित समय पर पके हुए स्वयं टूट कर गिले हुए फलों को खाए विविध तपस्याओं का विधान करते हुए 22वें श्लोक में कहते हैं भूमौ विपरिवर्तेत तिष्ठेद्वा प्रयदैर्दिनं स्थानासनाभ्यां विरहे विहरेत सवनेशूप यन्नपह। भूमौ विपरिवर्तेत भूमि पर लेते हुए अथवा दिनम प्रपदैह तिष्ठेत दिन में कुछ समय पैरों पर खड़ा रहे स्थान आसनाभ्याम किसी भी आसन पर बैठकर कभी उठकर सवनेशु अपह उदयन प्रातः सायं दोनों कालों में स्नान करता हुआ विहरित अपना समय बिताए। ग्रीष्मे पंच तपास्तु स्याद् वर्षा स्वभ्रावकाशिकः आर्दवाशास्तु हेमंतो ते वर्षो क्रमशो वर्धयस्तपः। वानप्रस्थ निवासी क्रमशः तपः वर्धयन क्रमशः अपने तप को बढ़ाता हुआ ग्रीष्मे पंचतपास्तु स्यात् ग्रीष्मे पंचाग्नियों से तप करे और वर्षा में वर्षासु अभ्र अवाकाशिका वर्षा में बरसात में नग्न होकर बैठे हेमंते आद्रवाशातु और हेमंत में गीले कपड़े धारण करके रहे ऐसा वानप्रस्थ के लिए विधान किया गया है। किंतु ये श्लोक प्रक्षिप्त माने जाते हैं आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। उपस्पर्शम श्रवणम पितृन्द्रेवांश तर्पयेत् तपश्चरम चोग्रतरम शोषयेत् देहमात्मनः अग्नीनात्मनि वैतानान् समारोप्यथा विधिः। अनग्निरनिकेतः स्यान् मुनिर्मूल फलाशनः। त्रिशवणम उपस्प्रसन, तीनों कालों में स्नान करने करके पितृन च देवान तर्पयेत, पितरों को और देवताओं को का तर्पण करे और उग्रतरम तपम चरण आत्मना देहम शोषयेत, कठोर तपस्या से आत्मना अपने शरीर को शोषय सुखा देना चाहिए। अग्निन आत्मनि वैतानान यथाविध, वैतानान अग्निन आत्मनि समारोप, विधि के अनुसार वैतान अग्नि को अपने ऊपर रखकर और कठिन तपस्या से वानप्रस्थ की सिद्धि पाकर अनग्नि ही अग्नियों को त्याग कर पकाने की क्रिया को छोड़कर अनिकेता यानी कि न निकेता, निकेत घर में न रहे, ग्रह त्याग कर मुनि मौनम धारयते इति मुनि, जो मौन धारण करे, मौन धारण करके मूल फल अशनाह स्यात, और केवल मूल और फलों को खाकर रहना चाहिए। ये 17 श्लोक संख्या से 25 श्लोक संख्या तक प्रक्षिप्त बताते हुए विद्वान कहते हैं कि यहाँ पर प्रसंग विरोध है, कि यहाँ पर भक्षावक्ष संबंधी विधान चल रहा था, अचानक ही तपस्याओं के विधान का वर्णन करने लगे, अतः यहाँ पर प्रसंग विरोध है, अंतर विरोध भी दृष्टिगोचर होता है, तथा क्योंकि 18वें 19वें श्लोक में एक दिन, एक मास, 6 मास और 1 वर्ष तक धान्यादि संचय के विकल्प दिए हैं, जबकि 15वें में वर्षभर तक धान्यादि संचय रखने का संकेत है, 11वें में बसंत और शरद ऋतु में अन्य का संचय कथन है। इस प्रकार संचय संबंधी संकेत पहले देने के बाद पुनः 18वें श्लोक में संचय संबंधी व्यवस्था की आवश्यकता भी नहीं है, और यह भिन्नता पूर्व श्लोकों से विरुद्ध है। दूसरी बात कि 19वें श्लोक में भोजन के 4 समय दिए, जबकि 7वें और 12वें श्लोक से स्पष्ट विधान है कि बलि आदि निकालकर यज्ञों के बाद भोजन कर सकता है। 19वें श्लोक में जो विधान किया गया है यह कोई विधान ही नहीं बनता, क्योंकि दिन में 4 बार खाना है तो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी नहीं खा सकता है, इस विधान के लिए कोई नियम नहीं बनता। अमावस्या पूर्णिमा के दिन केवल 1 बार ही लपसी खाने का बंधन है, क्योंकि पूर्व श्लोकों में व्यवस्थाओं में ऐसा कोई बंधन न होकर केवल विभिन्न पदार्थों के खाने की छूट दी गई है। और मनु ने ऐसे तप का आदेश दिया है जिससे अपने शरीर की हानि या क्षय न हो, अक्षिण्वन्योगतः तनुम, इस प्रकार के उल्लेख 2 अध्याय के 75वें श्लोक में मिलता है। तो और दूसरी बात, यहां पर पुनरुक्ति का दोष आता है, अनिकेता स्यात्, इसका विधान पहले कर चुके हैं कि ग्रह जब ग्रह छोड़ देगा तभी तो वानप्रस्थ होगा, तो वानप्रस्थ के लिए अनिकेता स्यात् कहने का क्या तात्पर्य है 26वें श्लोक में जो प्रक्षिप्त नहीं माना गया है। महर्षि मनु कहते हैं कि संसारिक सुखों में आसक्त न रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अप्रयत्नः सुखार्थेषु ब्रह्मचारी धराशयः शरणेष्वम मश्यैव वृक्षमूल निकेतनः। सुखार्थेषु अप्रयत्नता, प्रयत्न शरीर के सुख के लिए अति प्रयत्न न करे, किंतु ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी अर्थात अपनी स्त्री के साथ हो तथापि उससे विषय चेष्टा कुछ न करे। धराशय भूमि पर सोना चाहिए। शरणेषु अमसः अममः चैव, अपने व स्वकीय पदार्थों में ममता नहीं करनी चाहिए। वृक्षमूल निकेतना, और वृक्ष के मूल में ही उसका घर हो, ऐसा वानप्रस्थ धर्म होता है। 27वें श्लोक में तपस्वियों के घरों में भिक्षा का ग्रहण करना चाहिए। तापसेष्वेषु विप्रेषु यात्रिकं भयक्षमाहरेत् गृहमेधिषु चान्येषु द्विजेषु वनवासिषु। जो जंगल में पढ़ाने और योगाभ्यास करने वाले तपस्वी धर्मात्मा विद्वान लोग रहते हों, जो कि गृहस्थ या वानप्रस्थी वनवासी हो, उनके घरों से ही भिक्षा ग्रहण करना चाहिए। भिक्षम आहरेत, अन्य क्या नहीं, ग्रामादात आहृत्य ग्रामदा हृत्य वा स्नीयात अष्टौ ग्रासान वसे वने वसन प्रतिग्रह पुटे नैव पाणिना शकलेन वा। वने वसन माने वन में रहते हुए यदि वन में भिक्षा न मिले तो ग्रामाद ग्राम से पुटेन पाणिना वा शकलेन प्रतिग्रह्य, दोनों हाथों अथवा सकोरों इसमें ग्रहण करके आहृत्य माने भिक्षा लाकर अष्टौ ग्रासान अश्नियात, केवल 8 ग्रास ही खाने चाहिए। ये भी श्लोक प्रक्षिप्त बताते हैं कि 16वें श्लोक में पीड़ित अवस्था में भी वानप्रस्थ गांव का अन्न फल आदि लेने से स्पष्ट निषेध किया गया है, फिर भी 27वें श्लोक में ऐसा कहा गया है कि वानप्रस्थ और सन्यासियों से ही भिक्षा लेना चाहिए, फिर 28वें श्लोक में ऐसा कहने से इसका प्रसंग विरोध मिलता है और अंतर विरोध भी दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि यहां तपस्वियों से ही भिक्षा लेने का विधान किया गया है। 29वें श्लोक में मंत्रों का मनन करते रहना चाहिए क्योंकि इससे हमारा चित्त शुद्ध होता है, इसका वर्णन करते हुए महर्षि मनु कहते एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने वसन विविधाश्चोपनिषदीरात् मनसंसिद्धे ये श्रुति। अर्थात विविधांशौप निषदीरात्म सिद्धयते श्रुति। वने वसन वन में रहता हुआ एताह च अस्याह दीक्षा सेवित, इन और अन्य देवताओं का भी सेवन करे। कौन सी दीक्षाएं हैं? और आत्म सिद्धये, आत्मा और परमात्मा की सिद्धि के लिए पूर्वोक्त जो दीक्षाएं दी गई हैं उनका सेवन के लिए यहां पर बताया गया है, और अपनी आत्मज्ञान के लिए परमात्मा के ज्ञान के लिए विविधा औपनिषदि श्रुता, नाना प्रकार के उपनिषद अर्थात ज्ञान और उपासना विधि या श्रुतियों के अर्थों पर विचार किया करें। यहां पर ध्यान देने योग्य है कि उपनिषद का अर्थ यहां पर पुस्तक विशेष से नहीं है, यहां पर उपनिषद विद्या से अभिप्राय है। उपनिषद उप माने समीप में, निषद माने बैठकर, अर्थात वन में जो तपस्वी रहते हों उनके समीप में बैठकर ज्ञान प्राप्त करें। ऋषिभिर् ब्राह्मणैश्चैव गृहस्थैरेव सेविताः विद्या तपो विवृद्ध्यर्थं शरीरस्य च शुद्धये। ऋषिभिः ब्राह्मणैः गृहस्थैव, ऋषियों ब्राह्मणों और गृहस्थों ने भी विद्या तपः विवृद्ध्यर्थं, विद्या और तप की वृद्धि के लिए और शरीरस्य शुद्धये शरीर की शुद्धि के लिए सेविता इन दीक्षाओं और स्थितियों का सेवन किया है। ऋषि भी ब्राह्मणैश्चैव गृहस्थैरेव सेविता विद्या तपो विवद्यर्थं शरीरस्य च शुद्धये, ऐसा 30वें श्लोक में कहते हैं। ऋषि ब्राह्मण ही गृहस्थ ही एव, ऋषियों ब्राह्मणों और गृहस्थों ने भी विद्या तपा विवृद्ध्यर्थम विद्या और तप की वृद्धि के लिए और शरीरस्य शुद्धये शरीर की शुद्धि के लिए सेविताहीन दीक्षाओं और स्थितियों का सेवन किया है। अपराजितावास्थाय ब्रजेद्दिश्यम जिहगगह आनिपाताक्ष शरीरस्य युक्तो वारि निलाशनः। शरीरस्य आनिपात, शरीर के छूटने तक, वारि अनल अशनः, जल और वायु का भक्षण करते रहना चाहिए, रहता हुआ युक्ता योग साधना में तत्पर रहकर अपराजिताम दिशम आस्थाय, अपराजित दिशा में स्थित होकर अर्थात मृत्यु अवस्था आने पर अजिग ब्रजेत शांत भाव से शरीर त्याग दे। आशाम महिर्षचर्याणाम त्यक्त्वान्यतमायातनुम वीत शोक भयो भयो विप्रो ब्रह्मलोको महीयते। आसाम महिर्षचर्याणाम अन्यतमया तनुम त्यक्त्वा, इस महर्षियों की दिनचर्याओं का पालन करते हुए किसी एक दिनचर्या के अनुसार शरीर को छोड़ने से ही वीति शोक भया विप्रह, शोक और भय से रहित हुआ विद्वान ब्रह्मलोके महीहते, मुक्त में जाकर आनंद पाता है। 33वें अध्याय से संन्यास धर्म का वर्णन करते हैं कि संन्यास ग्रहण करने का विधान। वनेषु च बृहत्त्वम् तृतीयं भागमायुषः चतुर्थम् आयुषो भागम् त्यक्त्वा शङ्गान् परिव्रजेत। इस प्रकार से वन के आयु का तीसरा भाग अर्थात 50वें वर्ष से 75वें वर्ष पर्यंत वानप्रस्थ होकर चौथे में परिव्राट सन्यासी हो जावे। कहते हैं आश्रमादाश्रमां गत्वा हुतो मोचितेन्द्रियः भिक्षा बलि परिश्रांतः प्रव्रजेन्ते इत्यवर्धते। हुतहोमः, जिसने सदा यज्ञ किए हैं, भिक्षा बलि परिश्रांतः, भिक्षा और बलिवैश्य देव से थका हुआ अर्थात सदा इनके कर्मों को निभाता आ रहा जितेन्द्रियः, जितेन्द्रिय द्विज आश्रमात् आश्रमं गत्वा प्रव्रजन् संन्यास लेकर प्रेत्य वर्धति, मरकर परजन में उन्नत को प्राप्त होता है। ऋणानि त्रीणिपात कृत्य मनोमोक्षम निवेशयेत अनपाकृत्य मोक्षम तो सेवमानो ब्रजध्यः। तीन ऋणानि अपाकृत्य, तीनों ऋणों ऋषि ऋण देवऋण और पितृऋण को चुकाकर मनः मोक्षे निवेशयेत, मन को मोक्ष में लगाना चाहिए। अनपाकृत्य तु ऋणों को न चुकाकर मोक्षम सेवमान अमोह चाहने वाला अधा ब्रजित अधिक गति को प्राप्त करता है। 36वें श्लोक में अधीत्य विधिवद्वेदान पुत्रांशोत्पाद्य धर्मतः दृष्ट्वा च शक्तितो शक्तिततो यज्ञैर मनोमोक्षे निवेशयेत। विधिपूर्वक गृहस्थाश्रम से विदो को पढ़कर और गृहस्थी गृहस्थाश्रमी होकर धर्म से पुत्रोत्पत्ति कर शक्तितः यज्ञै दृष्ट्वा और वानप्रस्थ में सामर्थ्य के अनुसार यज्ञ करते मोक्षे मनः निवेशयेत। मोक्ष में मन लगाना चाहिए, संन्यासाश्रम में मन लगाना चाहिए। अनधीत्य द्विजो वेदान अनुत्पाद्य तथा सुतान अनिष्टा चैव यज्ञेश मोक्षेन्मिच्छन् भजत्यथः। जो द्विज वेदान अनधीत्य वेद को न पढ़कर तथा सुतान अनुत्पाद्य और पुत्रोत्पत्ति न करके यज्ञैः अनिष्ट्वा यज्ञों को न करके मोक्षम इच्छन् मोक्ष का चाहता है अधः व्रजत, वो अधिक अधोगति को प्राप्त होता है। ये भी श्लोक प्रक्षिप्त माना जा रहा है। 38वें श्लोक में बताते हैं कि गृहस्थाश्रम से भी संन्यास लिया जा सकता है। प्रजापत्याम निरूपेष्टिम सर्ववेदस दक्षिणाम आत्मग्नीन समारोप्य ब्रह्मणः प्रव्रजेत गृहात्। प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्रजापत्याम सर्ववेदस दक्षिणाम इष्टम निरूप्य, जिसमें यज्ञोपवीत और शिखा का त्याग किया जाता है, अग्नीन आत्मनि समारोप्य आवाहनीय गार्हपत्य और दक्षिणात संज्ञक अग्नियों का आत्मा से समारापित करके ब्रह्मणा ग्रहात् परिव्रजेत, ब्राह्मण गृहस्थाश्रम से ही संन्यास लेवे। यो दत्त्वा सर्वभूतेभ्यः प्रव्रजन्ति भयं दतात् तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः। यह सर्वभूतेभ्यः अभयं दत्त्वा, जो पुरुष सब प्राणियों को अभयदान देकर सत्योपदेश देकर ग्रहात् परिव्रजत गृहस्थाश्रम से संन्यास ग्रहण करता है, तस्य ब्रह्मवादिनः तेजोमया लोका भवन्ति, उस ब्रह्मवादी वेदोक्त सत्योपदेशक सन्यासी को मोक्ष और सब प्रकार के लोक लोकांतर तेजोमय ज्ञान प्रकाशमय हो जाते हैं। यस्मादणव
भूतानां द्विजानां नोत्पद्यते भयं तस्य देहाद् विमुक्तस्य भयं नास्ति कुतश्चन।
यस्मात् द्विजन द्विजान जिस द्विज से भूतानां अणु अपि भयं न उत्पद्यते, प्राणियों को थोड़ा सा भी भय नहीं होता। तस्य उसको देहाद् विमुक्तस्य देह के मुक्त होने पर कुतश्चन भयं नास्ति कहीं भी भय नहीं रहता। वैराग्य न होने पर गृहस्थ या ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास ग्रहण।
अगारादभि निष्क्रांतः पवित्रो पक्षितो मुनिः समुपोढ़ेषु कामेषु निरक्षरः परिव्रजेत।
कामेषु समुपोढ़ेषु निरपेक्षा सब कामों को जीत लेवे और उसकी अपेक्षा न रहे पवित्रात्मा और पवित्रांतःकरण मुनि मननशील हो जावे तभी गृहस्थ आश्रम से निकल कर परिव्रजेत संन्यास आश्रम को ग्रहण करे अथवा ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ग्रहण कर लेवे।